अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस और गांव आजीविका हम विषय पर विशेष बातचीत के लिए हमारे साथ आज उपस्थित है डॉक्टर आशीष कुमार झा, हेड डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी हिस्लोप कॉलेज नागपुर से। नमस्कार सर जी।
नमस्कार सर। नमस्कार
सर जी, जैसा कि आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस है और चूंकि आज हम बात कर रहे गांव आजीविका और हम इसे पर, तो हम आपसे जानना चाहते कि हम कृषि को लाभ का धंधा बनाने के लिए किसानों ने किस तरह की तकनीकी अपनानी चाहिए।
सब नमस्कार सर, सबके जो भी सुनने वाले हमारे, जो भी दिन तक हमारी बातें पहुंचने वाली है उन सबको भी नमस्कार। और अंतर्राष्ट्रीय हम लोग जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल टी डे, तो उसके लिए भी शुभकामनाएं। और कल इंटरनेशनल बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी डे है, जैविक विविधता की, उसके लिए भी सबको शुभकामनाएं। और बीता हुआ जो कल था उस समय में इंटरनेशनल बी डे था, तो उसके लिए भी सबको शुभकामनाएं। तो सर, जैसा कि आपका सवाल है कि हम लोग को किसान की आमदनी अगर बढ़ानी है तो कैसे बढ़ानी है, तो जब हम हरी क्रांति देखते हैं तो हरी क्रांति का जो ये वाला जो पार्ट है, क्योंकि हमारे इधर में हरी क्रांति बहुत अच्छे से लागू हुआ, हमको पता है कि हम खाद फसलों में अपने आप को पूरी तरह से आत्मनिर्भर कर सके। लेकिन अब ये वाला जो पार्ट है इसमें हमको दो चीज पे फोकस करना होगा, एक तो होता है आधुनिक खेती और दूसरा होता है फसल का विविधीकरण, यानी हम लोग इंग्लिश में उसको बोलते हैं मॉडर्नाइजेशन एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप। में बहुत जरूरी है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप को अगर हम समझने की कोशिश करें तो बेसिकली डाइवर्सिफिकेशन जो होता है, आप किसी एक पर्टिकुलर क्रॉप के भी अलग अलग किस्म, अनेक किस्म को अगर उगाते हैं तो भी हम उसको डाइवर्सिफिकेशन में लेते हैं। कभी कभी हम विभिन्न प्रकार के फसल को भी उगा सकते हैं डाइवर्सिफिकेशन में। तो ये जरूरत किस लिए है, ये सिर्फ किसान के लिए ही जरूरत नहीं है सर, मेरे ये पर्यावरण के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि जब हरित क्रांति हुआ उस समय में हमने जिस तरह से खाद फसलों को उगाने के लिए कीटनाशक का प्रयोग किया, या फिर खरपतवार नाशक जैसे हर्बिसाइड, इंसेक्टिसाइड या फिर सिंथेटिक उर्वरक का जो हमने प्रयोग किया, केमिकल फर्टिलाइजर का जो हमने उपयोग किया, उस कारण से किसी न किसी तरह से हमारे जल और जो मिट्टी है दोनों दूषित हुई है। तो जब हम फसल विविधीकरण की बात करते हैं तो इसमें हम सिर्फ किसान का, हम ये नहीं देखते कि किसान को ही फायदा मिल रहा है, जो उसके लाइवलीहुड के लिए हम बोलते हैं, उसको पॉवर्टी लेवल से बाहर निकालने के लिए जो बोलते हैं, बल्कि हम क्या देखते हैं कि जो हमारे पास में जो पानी है, जो हमारी मिट्टी है, उसको भी उसकी फायदा मिलती है। तो अगर आप फायदा का देखेंगे तो इसे किसान की तरफ से हम देख रहे हैं। जब मैं खेती करता हूँ तो मुझे किसान जो मुझे लगता है तो मेरा पानी बचता है, मेरा स्वाद बचता है और मेरे पैसे बचते हैं अगर हम फसल का विविधीकरण करते हैं। तो साथ ही साथ मैं क्या देखता हूँ कि एक किसान का आय भी बढ़ता है, जिसको हम लोग बोलते हैं अपना डबल ट्रिपल इनकम जो हम लोग बोलते हैं आजकल, तो डबल ट्रिपल फायदे जो हम बोलते हैं, तो वो भी इससे होता है। मिट्टी की तो जब हम बात करते हैं तो मिट्टी की उर्वरता भी इससे बढ़ती है, और मैंने आपको पहले कहा कि ये सबको अगर साथ मिले तो पर्यावरण की भी सुधार होती है। आधुनिकरण का जब हम बात करते हैं तो आधुनिकरण यहाँ पर जो एक कंसेप्ट आता है आधुनिकरण का, तो मुझे लगता है कि जो सरकार के जो बहुत सारे फॉर्म है, हर आप चाहे वो महाराष्ट्र लीजिए, चाहे मध्य प्रदेश लीजिए, चाहे छत्तीसगढ़ लीजिए, सब जगह सरकार के अपने खुद के फार्म हाउस होते हैं। तो सरकार को मॉडर्नाइजेशन पहले वहां पे करना है। तो इस मॉडर्नाइजेशन में क्या करना होता है, तो पहला तो हम घरों बोलते हैं कि नर्सरी जो है आपके पास में, तो उस नर्सरी में आप, क्योंकि आप एक किसान को नहीं बोल सकते कि आप सीधा जाके मॉडर्नाइज कर दिए, उसने वो चीज देखा ही नहीं है, वो सीधा अब बोलते हैं कि हम लोग यहाँ पे पर्टिकुलरली ग्रीन शेड हुआ या पॉली हाउस हुआ उसके लिए पैसे जब मांगते हैं, तो सरकार के पास में खुद का एक पॉली हाउस होना चाहिए। मुझे खुद लगता है मॉडर्नाइजेशन सरकार के खेत में जब होता है उसके पास में खुद का पॉली हाउस होता है, उसके पास में खुद का नर्सरी शेड रहता है, नर्सरी यूनिट रहता है, जहाँ पर वो पौधे का प्रबंधन, जिसको हम लोग प्लांट प्रोपोगेशन करते हैं बोलते हैं, वहां पे अगर वो प्लांट प्रोपोगेशन कर रहा है तो ये जो किसान देखता है एक पायलट लेवल का छोटे छोटे लेवल पर जब देखता है तब उसको लगता है कि शायद ये मैं अपने खेत से भी कर सकता हूँ। दूसरा जो मुझे लगता है कि जो पौधे प्रबंधन है वो सरकार का जो खेत है वहाँ पे मिलना चाहिए, जहाँ पे अलग अलग वेरायटी, जैसे अगर हम केला का बात करें तो रसमली जो होता है, या फिर हम अमरूद का बात करें तो लखनऊ वेरायटी, तो ये सब अलग अलग जो विविध जो नए नए वेरायटी है जिसके ऊपर क्षमता ज्यादा है, जिसका हर तरह से जो हम इसको बोलते हैं कॉस्ट बेनिफिट रेशियो अच्छे फसल, तो ये उस मॉडर्न जो सरकार का जो खेत है वहाँ दिखना चाहिए और अवेलेबल होना चाहिए, जो प्लांट का जो प्रोपगेशन है ये मटेरियल अवेलेबल होना चाहिए किसान के लिए। इसके अलावा मुझे लगता है कि वहाँ पे माइक्रो इरिगेशन फैसिलिटी तो आजकल के ये दिखना चाहिए उनको, क्योंकि जब तक हमारे किसान ये फैसिलिटी नहीं दिखेंगे तब तक उनको समझ में नहीं आएगा। ग्रीन हाउस होना चाहिए, वर्मी कंपोस्ट यूनिट होना चाहिए, वर्मी कंपोस्ट के साथ में एक स्प्रेडर यूनिट होना चाहिए, स्प्रेडर जो आसपास के जो पत्तियां रखते हैं जो भी ये रखता है उसको छोटे छोटे टन में तोड़ के उसके बाद हम उससे खाद बना लेते हैं। तो वर्मी कंपोस्ट यूनिट, स्प्रेडर यूनिट, ये सब होना बहुत जरूरी है आज के डेट में। इसके अलावा मुझे लगता है कि मॉडर्नाइजेशन का जब हम बात करते हैं तो सरकारी जो खेत है, सरकार के अंदर में जितने भी खेत आते हैं वहाँ पे इंटीग्रेटेड फार्मिंग होना बहुत जरूरी है, खासकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में, क्योंकि ये सारे जगह में अगर आप देखेंगे तो तालाब, अच्छे पानी का रिसोर्स कम नहीं है, तालाब है यहाँ पर, और तालाब और मैक्सिमम इसमें जैसे महाराष्ट्र का बात करेंगे तो महाराष्ट्र में जो क्षेत्र है जैसे गोंदिया डिस्ट्रिक्ट, भंडारा डिस्ट्रिक्ट जो छत्तीसगढ़ से लगा हुआ है, मध्य प्रदेश का जो बालाघाट, इस सब जगह में पैडी होता है। इनफैक्ट छत्तीसगढ़ में तो हम अच्छा खासा इंटीग्रेटेड फार्मिंग देखते हैं जहाँ पर मछली और पैडी दोनों को एक साथ में करते हैं। इसके अलावा मुझे लगता है कि जो सरकार का जो खेत है वहाँ पे खुद का गोटरी यूनिट होना चाहिए, खुद का एक डेयरी होना चाहिए, ऑटोमेटेड मशीन वाला डेयरी यूनिट होना चाहिए। ये सब जब किसान देखेंगे तो हो सकता है उसको देख कर वो उसको उसी चीज को अपने अंदर उतारने की कोशिश करेंगे, और मुझे एकदम विश्वास है कि आधुनिकीकरण एवं फसल विविधीकरण के कारण उनको सफलता मिलेगी।
सर जी, हम आपसे आज इस अवसर पर यह भी जानना चाहेंगे, क्योंकि अभी बोवनी का समय शुरू होने जा रहा है और लगभग 7 जून के बाद किसान अपने बोवनी के लिए तैयार खेत कर रहा है, तो बोवनी के पूर्व किसानों को कौन सी महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना चाहिए?
सर, अगर खेती का देखते हैं जब हम अपने तरफ में, तो खेती तो हमारे घर में पारंपरिक से, मतलब जो ट्रेडिशनल जिसको बोलते हैं, परिवार से आया हुआ है, तो किसान को ऑलरेडी, हमारे जो किसान है उनको भूमि की जो तैयारी, हम लोग बोलते हैं कि बोनी से पहले भूमि की तैयारी करने की, तो भूमि की जो तैयारी है वो ऑलमोस्ट सब किए रहते हैं, कोई क्योंकि पारंपरिक है, उनको पता रहता है कि मार्ग, ढलान, भूखंड का आकार, ये उनको मालूम रहता है। उसी प्रकार उनको जो, चूंकि आज के डेट में सरकार जो है वो हेल्थ, सॉइल हेल्थ कार्ड एक जारी करता है, तो उसको अपनी मिट्टी के बारे में भी अच्छी खासी जानकारी रहती है, उस कारण से उनको पता रहता है कि कौन सा खाद या जो हम लोग उर्वरक बोल की मात्रा कितना डालना है वो उनको मालूम रहता है, तापमान का भी मालूम रहता है। जो मुझे एक जो मुझे दिखता है पहला, वो है जल संग्रह की, क्योंकि ये जब हम जल संग्रह की सिंचाई के लिए जब हम बात करते हैं, अब यहाँ पर जो होता है वो अपने घर में कुछ किसान है जिनके पास 1 एकड़ से भी कम जमीन बोलते हैं, स्मॉल लैंड होल्डिंग, तो किसान का जो यहाँ पर जो प्रॉब्लम आता है बोरिंग का, या फिर भूमि में एक टैंक होना, हम लोग बोलते हैं कि टैंक होना चाहिए, तो मुझे लगता है यहाँ पर सरकार को थोड़ी उनको सहायता करनी चाहिए बोरिंग और टैंक की फैसिलिटी का, ये मुझे दिखता है। लेकिन जो सबसे बड़ा मुझे बोनी से पूर्व के जो तैयारी में लगता है वो है किस प्रकार के बीज आपके पास होना चाहिए, तो बीजों का चयन जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कि क्या क्या होगा। अब अपने इधर में आप देखिएगा तो कुछ किसान जो होते हैं वो स्वयं बीज रखते हैं, अगर किसान जिसके पास में स्वयं का बीज नहीं है और दूसरे से लेते हैं, तो मेरा एक पर्टिकुलर उनको ये है कि विश्वास पात्र से ही बीज ले, क्योंकि बीज एक बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसा बीज रहेगा वैसा आपका फसल तैयार होगा। दूसरा मुझे लगता है कि बीज का जो उपचार करते हैं जब, तो बीज को बोने से पहले हम उसका उपचार करते हैं, तो उसमें फंगिसाइड, इंसेक्टिसाइड और राइजोबियम का जो है उसका एक हर बीज के लिए अलग रहता है रेशियो, तो इसके रेशियो में नहीं बोलूंगा, तो उसमें इसका ट्रीटमेंट देखूंगा। अब कुछ किसान ऐसे होते हैं सर, जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं जो गेहूं उगा रहे हैं अपने इधर में, क्योंकि गेहूं उगता है इन तीनों क्षेत्र में गेहूं उगता है, जो गेहूं उगा रहे हैं उनके मन में कैसा रहता है कि जब सही समय होता है बीज लगाने का, उस समय में उनके या तो फसल रहता है या तो कपास का रहता है या आलू रहता है। अगर ऐसा कोई किसान है जो गेहूं देर से लगाते हैं, तो उनको जल्दी पकने वाले खास किस्मों का ही गेहूं लगाना चाहिए। उसको जब उसका चयन करते हैं तब उसका ताप सहने की क्षमता का भी ध्यान दें, और बीमारी के कितना प्रतिरोध है वो बीज उसका भी ध्यान रखें। तो ये मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है बीज का। एक और चीज मुझे जो बीज के बारे में लगता है कि बीज बोने की प्रक्रिया, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि कल जो हाइब्रिड सीडा की जो वैरायटीज है, जो बेसिकली एग्रीकल्चर ICAR का जो वैरायटी सब आता है, तो उसकी कुछ प्रक्रिया है, तो वो प्रक्रिया का वो ध्यान रखें। और सॉयल हेल्थ कार्ड तो मैंने आपको पहले ही बताया कि गवर्नमेंट ने सबको जारी किया है, तो कुछ भी कम जा रहा है तो उस प्रकार ही अपना खाद का बहुत मात्रा।
सर जी, जैसा कि अभी आपने बहुत अच्छी महत्वपूर्ण जानकारी दी, लेकिन हम आपसे आज इस अवसर पर यह भी जानना चाहेंगे कि कृषि के साथ साथ कृषि को लाभ का धंधा बनाने के लिए पशुपालन, कुक्कट पालन, मधुमक्खी पालन क्या कर सकते हैं, और कर सकते तो इसके लिए विभाग के माध्यम से किस तरह प्रोत्साहन किया जाता है किसानों को?
सर, जब हम फसल विविधीकरण का बात करते हैं, क्योंकि अगर आप देखेगा तो केंद्र सरकार ने काफी इसके लिए 2017 में ही फसल विविधीकरण, आधुनिकरण और विविधीकरण पे 2017 से ही बहुत दबाव डाला था, और 2022 का या 23 का कुछ टारगेट था कि इसको इतना पूरा करना, लेकिन कोविड के कारण ये नहीं हो पाया। तो विविधीकरण में हम सारा चीज देखते, चाहे वो मधुमक्खी पालन हो, चाहे आपका पोल्ट्री हो, चाहे आपका गोट फार्मिंग हो, ये सारा चीज विविधीकरण में था, फसल विविधीकरण में था। अब सरकार ने हर चीज के लिए बनाया हुआ है। हम लोग एग्जाम्पल में कोट करते हैं मधुमक्खी पालन के लिए, तो मधुमक्खी पालन के लिए केंद्र सरकार का अगर आप देखेंगे तो केंद्र सरकार के पास में एक हनी रिवॉल्यूशन करके खादी ग्राम उद्योग कमीशन ने हनी रिवॉल्यूशन दिया है, जो कि वो सेंटर ऑफ बी रिसर्च ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट CBRTI के थ्रू वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। लेकिन और तो इसमें राज्य सरकार भी इसमें इम्प्लीमेंट करता है, राज्य सरकार का हमारे घर में जैसे महाराष्ट्र में खादी ग्राम मंडल रहता है और महाराष्ट्र के खुद के जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है वो है, तो उसी प्रकार से मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में भी मंडल के ऑलरेडी गठित है और कृषि विभाग है। तो ये सब हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए जो सरकार है, सरकार उनको सब्सिडी देता है। सब्सिडी में जैसे हम अभी बी कीपिंग का बात कर रहे हैं, तो आपके जो बक्से मधुमक्खी की जो पेटियां रहती है, उस पेटी में से 70% जो है वो सरकार अपने ऊपर उठाता है खर्चा, और 30% जो है वो एक किसान को देना पड़ता है। जो ट्रेनिंग है, इसके लिए जो ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग पूरे मुफ्त में रहता है, 7 दिन का ट्रेनिंग या 10 दिन का ट्रेनिंग, ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों अपने तरफ से उठाते हैं, उसका पूरा खर्चा उठाती है, ट्रेनिंग मुफ्त में होता है। यही नहीं, अगर आपको प्रोसेसिंग यूनिट लगाना है किसी भी चीज का, तो उसके लिए भी सरकार आपको ये देती है, जो सब्सिडी है वो देती है। मधुमक्खी पालन में हम देखते हैं 10 लाख का सब्सिडी आता है, गोट फार्मिंग में अगर आप बात करते हैं तो गोट का वैरायटी के उसपे ये रहता है, उसपे भी आपको सब्सिडी मिलता है। इनफैक्ट हॉर्टिकल्चर जो है, हॉर्टिकल्चर में तो सरकार आपके बीच में पौधे फ्री में दे रहा है, तो किसान को मुझे लगता है कि इन सारे चीज का अपॉर्चुनिटी उठाना चाहिए। लेकिन इसमें मैं थोड़ा सा आपको, चूंकि मैं बी कीपिंग में रहता हूँ, इसमें मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि प्रॉब्लम कहाँ पर है। प्रॉब्लम है कि आज की डेट में जो अपॉइंटमेंट है या फिर जो रिटायरमेंट रेट है वो इतना ज्यादा है कि जो बहुत सारे फील्ड में जो पोस्ट है वो अनफिल्ड है। जैसे हम सीबीआरटीआई का बात करें, आज सीबीआरटीआई के पास उतना संख्या में उनके पास में लोग नहीं है कि वो सरकार की स्कीम को इम्प्लीमेंट कर सके। तो अगर हम जब प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई करते हैं, डीपीआर अप्लाई करते हैं, तो वो खुद लिख कर देते हैं हमको कि ये प्रोजेक्ट इस कारण से वायबल नहीं, इस कारण से वायबल नहीं। लेकिन जो मेन रीजन है मैन पावर। तो मुझे सरकार के तरफ से मुझे ऐसा लगता है कि उनको मैन पावर बढ़ाना चाहिए ताकि लोगों तक ये सब चीज पहुंचे।
सर जी, जैसा कि आपने कुक्कट पालन, मधुमक्खी और पशुपालन पर महत्वपूर्ण राय दी, क्योंकि आज विश्व चाय दिवस भी है, तो हम आज के इस अवसर पर हम आपसे किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश चाहेंगे। आप मोबाइल वाणी के माध्यम से किसानों को क्या संदेश देना चाहेंगे?
सर, मैं किसानों को सिर्फ जागरूक रहने के लिए कहूंगा, आप जागरूक रहिए। केंद्र सरकार द्वारा दिए गए सारे जितने भी सब्सिडाइज्ड ये है प्रोग्राम, उसको जानिए। केंद्र सरकार आपके बहुत सारे चीज के लिए, हर चीज के लिए आपको दे रहा है, और राज्य सरकार के भी जो भी खेती से रिलेटेड आपके जितने भी स्कीम है वो आपको मालूम होना चाहिए। अपने इधर में जो सबसे कमी है वो जानकारी की कमी है। हम तो आप अपनी जानकारी बढ़ाइए, और मैं आपको इतना गारंटी देता हूँ, चाहे वो छत्तीसगढ़ सरकार के कर्मचारी हो, चाहे वो मध्य प्रदेश सरकार के कर्मचारी हो, चाहे वो महाराष्ट्र सरकार के कृषि के कर्मचारी हो, ये सारे कृषि के कर्मचारी आपकी मदद करने के लिए हैं। आप उनके पास में जाइए, आपको वो डीपीआर तक बना के देंगे। हम लोग डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बोलते हैं, जो आजकल वो जरूरी रहती है किसी भी इम्प्लीमेंटेशन। बस खाली आपको क्या चाहिए, तो आपको जागरूकता चाहिए। जागरूकता से पता चलता है कि आप ये स्कीम का इस तरह से फायदा उठा सकते हैं। आप कृषि अधिकारी के पास में जाइए, उसको बोलिए कि मुझे इस कारण हेतु ये मैं प्रपोजल डालना चाहता हूँ, और मैं आपको गारंटी देता हूँ किसी भी कृषि अधिकारी राज्य स्तर पे या केंद्र स्तर का हो, वो आपको मदद करेगा। तो बस खाली आप जागरूक रहिए स्कीम के प्रति, ये मेरा आपको एक मैसेज है।
बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आप थे डॉक्टर आशीष कुमार झा, हेड डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, हिस्लोप कॉलेज नागपुर से, जिन्होंने मोबाइल वाणी के माध्यम से आज विशेष बातचीत के साथ महत्वपूर्ण अपनी बातें साझा की। आपका मोबाइल वाणी पुनः बहुत बहुत धन्यवाद करता है।
धन्यवाद सर, और मैं सबसे पहले आपसे माफी मांगना चाहता हूँ कि मैं सुबह से है आपको बोल के रखा, लेकिन किसी कारणवश आज मधुमक्खी पालन का आज दूसरा दिन था, तो मैं ट्रेनिंग में था, तो इस कारण से मुझे डिले हो गया। सॉरी सर, आई एम रियली सॉरी।